Om Shanti. जिस समय रिकॉर्ड बजा हम सब साइलेंस में बैठ गए. मेरे मन में उसी क्षण जो विचार आया वे मैं सबसे पहले एक्सप्रेस करती हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई थी उस समय जब आपस में मिलते थे तो किसी शब्द का उच्चारण नहीं करते थे, केवल मात्र एक दो को मस्तक में देखते हुए हर आत्मा आत्म स्मृति में स्थित हो अन्य को आत्म स्मृति ही दिलाती थी. और कुछ समय के पश्चात जब हमारी आदरणीय दादियां योग शक्ति से संपन्न हुई और विदेश वहां कराची हैदराबाद से भारतवर्ष में स्थानांतर हुआ, उस समय केवल मात्र योगिक आत्माओं की दृष्टि ही बहुत बड़ा कार्य करती थी. यहां तक प्रसिद्ध हो चुका था कि अगर आपने इनसे दृष्टि ले ली तो आप किसी दूसरे लोक में चले जाएंगे, क्योंकि कई दिव्य साक्षात्कार हो जाते थे. इसलिए कई लोग इनकी दृष्टि से डरते थे और जो प्यारे बाबा को पहचान गए वो दृष्टि अवश्य लेते थे. जब तक दृष्टि ना ले लें तब तक ऐसा समझते थे कि हमारा दादियों से मिलन ही नहीं हुआ. किसी से पूछो आप दादी से मिलकर आए, कहेंगे नहीं अभी नहीं मिले, आ तो कमरे से रहे हैं. क्यों नहीं मिले? क्योंकि पर्सनल दृष्टि नहीं मिली. इस प्रकार दृष्टि का महत्व चलता रहा, लेकिन जब सेवा केंद्र प्रारंभ हुए और जन मन की सेवाएं शुरू हुई तब इस बात की आवश्यकता समझी जाने लगी कि केवल दृष्टि से मिलना, शायद पब्लिक इस बात को नहीं समझ पाएगी. जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कई ऐसा कहने लगे कि जादू कर देंगे दृष्टि के द्वारा, तो वो दृष्टि के साथ साथ ओम शांति शब्द का उच्चारण होने लगा. और ओम शांति भी कहते और बाबा के बच्चे दृष्टि देते भी और दृष्टि लेते भी. फिर एक समय ऐसा भी आया कि बाबा के नए नए बच्चे ज्ञान में निकलने लगे और काफी हवा फैल चुकी थी दृष्टि से जादू हो जाता है. इसलिए सभी योग में बैठते लेकिन कुछ अनन्य रतन ही दृष्टि लेते और दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की योगिक शक्ति का अनुभव करते उस प्यारे बाबा का, लेकिन शेष आंखें नीचे करके रखते या आंख बंद करते या इधर उधर देखते रहते. तो हम कहते थे कि हमारी मनोहर दादी जी जब भी कहीं क्लास कराने जाती थी तो चाहे वो कितनी लेट पहुंचे क्लास में, वो ये कहते थे कि पहले 5-7 मिनट जब तक योग नहीं होगा मैं क्लास शुरू नहीं कराऊंगी. एक बार मैंने पूछा, दादी आप योग क्यों शुरू करते हो? क्योंकि कई बार लेट हो चुके होते हैं, बात चल रही है तो ऐसा लगता है कि दादी अपनी बात अब शुरू कर लें क्योंकि समय बहुत हो चुका है. कहा नहीं, मेरा ये सिस्टम है कि मुझे जाते ही मालूम पड़े कि इस क्लास में पुराने रतन कौन बैठे हैं, कुछ नए कौन हैं और बिल्कुल नए कौन हैं. तो मैंने कहा वो आप कैसे पता कर लेते हो? कहा जो पुरातन रतन जिन्होंने बाबा को सही रूप से समझा है वो आंखें खोल कर बैठेंगे और दृष्टि लेंगे। जिन्होंने अभी परिपूर्ण रूपेण समझा नहीं लेकिन ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, ज्ञान अच्छा लगता है, थोड़ा समझा है तो थोड़ी दृष्टि लेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर दृष्टि लेंगे, फिर नीचे करेंगे, तो पता चल जाता है ये अभी थोड़े अधूरे हैं। और एक वो है कि दृष्टि लेंगे ही नहीं, वो आंखें ही नीचे करके रखेंगे, तब पता चलता है कि बिल्कुल नए आज क्लास में आमंत्रित है, ये क्लास के विद्यार्थी नहीं है। तो इस बात से मैं परख जाती हूँ और उसी अनुसार मैं क्लास कराती हूँ। तो मैंने सोचा बात तो बहुत अच्छी है, परखने का तरीका भी ठीक है, क्योंकि कोई भी ज्ञान की पॉइंट बड़ी गहन कोई बात कहें तो कहने से पूर्व देखने पड़ता है कि मनोधरती जिनको कह रहे हैं वो इस बात को स्वीकार करने के परिपूर्ण रूपेण योग्य भी है या नहीं, या उसको किन शब्दों में इस बात को स्पष्ट करना होगा। लेकिन आज वो समय आ चुका है जब हेल्थ वालों ने इस बात को घोषित किया है कि ये जो क्रोमा है, कोरोना है, ये आंखों के द्वारा भी अगर लगातार ऐसे दृष्टि देंगे तो आंखों के द्वारा भी ये दूसरों को इफेक्ट कर सकता है। अब आंखों को अगर इफेक्ट कर सकता है आंखों के द्वारा तो दृष्टि देना लेना तो बंद ही हो गया। अब क्या करें? अब बाबा का वो फर्स्ट लेसन कि आत्मा समझकर ब्रकुटी में आत्मा को देखो, अब उसी स्थिति पर जो फाइनल स्थिति है जिस पर हम बच्चों को बाबा ठहराना चाहता है कि बच्चे आत्म स्मृति की स्थिति के अभ्यास से ही तुम बच्चे अपनी स्थिति को परिपक्व कर सकते हो और विकृतियों से बच करके संस्कारों का सुधार हो सकता है। तो मैं समझती हूँ आज वो समय पुनः आ चुका है। अब हम भी जब सामने योग में बैठते हैं तो मैं भी दृष्टि नहीं दे रही हूँ लेकिन सबके मस्तक में चमकती हुई उस मणि को ही देख रही हूँ और स्वयं भी उसी चमकते हुए ज्योतिर्मय स्वरूप की स्मृति में स्थित सबको उसी स्वरूप में ही प्यारे बाबा के बच्चे देख रहे हैं। जो हमारा फाइनल लेसन है वो आज हमें हालात और समय सिखा रहा है। हाँ, बाबा ने ये कहा था कि जो मेरे शिक्षा के अनुकूल अपने जीवन को ढालेंगे उनको प्राप्ति, और जो समय या हालात उनको ढालेगा उस द्वारा प्राप्ति में बहुत अंतर हो जाएगा। उन्होंने शिक्षक मुझे माना या उन्होंने शिक्षक परिस्थिति को या समय को माना? जिस पर बाबा का हम ये समझते हैं कि सच्चु की सृष्टि में चाहे महाराजा है या रैयत है, सभी 16 कला संपूर्ण है, कोई एक कला भी कम नहीं है। और उसका कारण यही ठहरा, एक कारण जिसमें से यही है कि जिन्होंने बाबा को प्रारंभ से लेकर अंत तक शिक्षक माना और उनकी आज्ञा के अनुकूल चलते चले गए और उसी अनुसार अपने को ढाला जैसे बाबा ने ढाला, वो शिक्षक के विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होते चले गए। और कई वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने सुना बहुत है लेकिन ढाला
ईश्वरी टीचर के मत पर नहीं, लेकिन हालात और समय ने उनको परिवर्तित किया है। इसलिए समय को टीचर समझने वाले के नंबर कम होते हैं। भले 16 कला वो बने लास्ट तक, लेकिन पद की कमी बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं कहूंगी आज भी समय है कि हम अपने शिक्षक की शिक्षाओं को सुने, सुनकर उस पर विचार करें और उनके अनुकूल अपने जीवन को ढालें। जिस पर मैं दूसरी बात, क्योंकि मैं कोई क्लास नहीं करा रही, मुझे ये है कि पुराने वर्ष के जाने से पूर्व कुछ पुराने वर्ष की वो यादें जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा सकती हैं, कहीं विस्मृत ना हो जाए और नया वर्ष कहीं फीका ना चला जाए। तो जहां भी मैंने ऑनलाइन भी क्लास कराई, मैंने ये पॉइंट कई जगहों पर सुनाया कि बाबा की ये बात हम बच्चों को मिली है कि बच्चे प्रातः 4 बजे का टाइम अमृत वेले का टाइम है, वो बाबा का अपॉइंट किया हुआ टाइम है। उस टाइम स्वयं बाप अपने बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जो उनके जीवन में जरूरत है उसे वरदान रूप उन शक्तियों का सहयोग देते हैं, क्योंकि वो मेरा निमंत्रित किया हुआ टाइम है कि इस टाइम तुम मेरी याद में बैठो और मैं आपको क्या चाहिए मैं वो शक्तियां आपको प्रदान करूंगा। कोई रियली उस समय इतने अटेंटिव होकर, इतने अलर्ट होकर 4 बजे के 4:45 का जो टाइम बाबा का निर्धारित किया हुआ टाइम है उस टाइम बैठते हैं तो मेहनत कम होगी, लेकिन आपके जीवन की आवश्यकता के अनुकूल आपको प्राप्तियां अवश्य हों। ना केवल यहां तक, बाबा ने एक वाणी में बहुत सुंदर ये बात स्पष्ट की है कि कई मेरे बच्चे जो इस समय एडवांस पार्टी में मेरे सहयोगी बने हुए हैं, ऐसे सहयोगी बच्चों की ये विशेष निशानी थी कि उन्होंने कभी 4 बजे का समय मिस नहीं किया। 4 से 4:45 बजे का समय जैसे प्यारे बाबा ने अपॉइंट करके ये टाइम दिया हुआ है, ये वो अपॉइंटमेंट का टाइम है जब भगवान ने कहा मैं आपसे मिलूंगा और उन्होंने वो समय पूरा उसी अनुकूल बिताया। आज जब वो पुरुषार्थ करते अपनी संपन्न अवस्था को प्राप्त हुए, क्योंकि आप सबको मालूम है हर एक की संपन्न अवस्था अपने अपने अनुकूल होती है, सबकी संपन्नता एक बराबर नहीं होगी। जब वो अपने अनुकूल अपनी संपन्न अवस्था को प्राप्त करके चोला तज कर चले जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आत्माएं सूक्ष्म वतन में बैठ जाती हैं, वो अवश्य जन्म लेती हैं, लेकिन उनका वो जन्म 84वां जन्म उसी में ही काउंट होता है, क्योंकि उस समय अब वो बाबा ने उन्हें सर्विस अर्थ ट्रांसफर किया है, उसी ब्राह्मण आत्मा को ट्रांसफर किया है सेवा अर्थ। और जब वो आत्मा जहां भी जाकर जन्म लेती है, पिछला हिसाब किताब सब पूरा हो गया जितना उसने कमाना था या जो उसने अपने जीवन में बनाना था वो बना लिया, अब उसका कमाई का स्वयं की कमाई का पीरियड समाप्त हुआ, अब उसका जो समय है वो ईश्वर के कर्तव्य में सहयोग का समय है। और ये सहयोग के समय कौन आत्माएं बाबा को काम आएंगी जो प्रातः 4 बजे की अच्छी अभ्यासी आत्माएं होंगी। जब वो शरीर छोड़ चुकी होती हैं वो जो संस्कार आत्माओं के साथ जाता है तो 4 बजे का संस्कार उनके साथ जाता है, और प्रातः 4 बजे चाहे वो छोटे रूप में है या बड़े रूप में है या कहीं बुजुर्ग रूप में है, जहां भी हैं, और बाबा ने खास कहा हुआ है कैसी एडवांस पार्टी की आत्माएं विश्व के चारों कोनों में फैल चुकी हैं, क्योंकि जब किसी को घेराव डालना होता है तो चारों तरफ से घेराव डाला जाता है, तभी वहां घेराव बन सकता है। तो बाबा ने कहा ये चारों दिशाओं में मेरी एडवांस पार्टी के बच्चे घेराव डाल चुके हैं, और प्रातः 4 बजते ही ये मेरे पास वतन में पहुंच जाते हैं। ये कोई जानकर नहीं पहुंचते कि हम ब्राह्मण हैं और हमको योग लगाना है, ये नॉलेज इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो संस्कार के वशीभूत ये 4 बजे उठते हैं और बाबा इनको वतन में इमर्ज कर लेता है। और जब ये आत्माएं वतन में आती हैं, उस समय इन्हें ये सब कुछ विस्मृत हो चुका होता है कि हम शरीर छोड़ चुके हैं, हम कहीं और जन्म ले चुके हैं, ये उन्हें कुछ स्मृति में नहीं होता। उन्हें ऐसा ही लगता है जैसे हम ब्राह्मण थे और प्रातः 4 बजे योग करते थे, ऐसा ही उनको उस समय आभास होता है। ये बाबा के महावाक्यों की मैं बात सुना रही। उस समय बाबा ने कहा मैं इन बच्चों को विशेष रूप से आज सारा दिन किस सेवा में इन्हें तत्पर होना है, मैं इनको पूरा चार्ट उस दिन की दिनचर्या का बनाकर देता हूं, क्योंकि ये मेरी सेवा पर गए हुए हैं और इन्हें इस समय केवल कनेक्शन मेरे से है। जन्म अवश्य इन्होंने लिया हुआ है लेकिन मेरी पालना में पल रहे होते हैं और मेरी ही सेवा में होते हैं। सारा चार्ट इन बच्चों को मैं प्रातः 4 से 4:45 के अंदर सारा चार्ट इन बच्चों को दे देता हूं, तभी इनको एडवांस पार्टी के बच्चे कहे गए कि एडवांस में अब क्या क्या सेवाएं जो रही हुई हैं वो करनी इन आत्मों पर बाबा ने रखी हैं। बाबा ने कहा ये वो सेवाएं करते हैं। जब वो वापस अपने स्थल पर पहुंच जाते हैं 4:45 बजे, उनको बिल्कुल ये स्मृति में नहीं रहता कि हम कहीं गए थे और किसी से मिलन मुलाकात हमारी मॉर्निंग में हुई थी। ये सब विस्मित हो गया क्योंकि इनका 84वां जन्म पूरा हो चुका है। उस समय ये आत्माओं में जो बाबा ने सारा दिन की सेवाओं का रिकॉर्ड इनमें भरा है, वो जैसे रिकॉर्ड उनको भरे अनुकूल उनका ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड चलता है और उनसे वो सेवाएं होती हैं। तो जैसे बाबा उन बच्चों से जो जिस आत्मा की सेवा चाहते हैं वो उन बच्चों के द्वारा उन आत्माओं की सेवाएं होती है। इसलिए 4 बजे का समय आप समझ सकते हैं कितना महत्वशाली है। और खाली इतना ही नहीं है, बाबा ने एक महावाक्य में बहुत सुंदर स्पष्ट किया हुआ है कि बच्चे एक समय ऐसा आएगा कि लाखों लाखों की तादाद में इकट्ठी ही आत्माएं चोला छोड़ेंगी, चाहे वो सुनामी की लहर हो या कोई अन्य तूफान या भूचाल या अकाल या किसी प्रकार का भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी सिविल वार हो या किसी प्रकार का युद्ध हो, लाखों लाखों आत्माएं जब इकट्ठा शरीर छोड़ेंगी, उस समय ये आत्माएं जन्म नहीं ले पाएंगी, क्योंकि एकदम इतनी आत्माओं का जन्म नहीं संभव होगा और मुक्ति का द्वार अभी बंद है। जब तक उसका उद्घाटन ना हो तब तक द्वार बंद है, तो गर्भ में ये जा नहीं पाएंगी, मुक्ति द्वार खुला नहीं, घर पहुंच नहीं पाएंगी, ये वातावरण में मंडराएंगी। और वातावरण में ना केवल मंडराएंगी, कई आत्माएं किसी आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब का खाता होगा तो वो उसमें प्रविष्ट भी कर लेंगे। और इन आत्माओं ने, जबकि भटक रही आत्माएं हैं, उनको स्थान नहीं मिला अपना निश्चित रहने का, अगर बच्चे ब्राह्मण बच्चे भी योग लगाने बैठेंगे, वे उनको योग नहीं लगाने देंगी। उन्हें ऐसी महसूसता होगी कि हमको जैसे कोई डिस्टर्ब करता है, योग में बैठते हैं लेकिन चित नहीं लगता, मन कहीं ना कहीं जाता है, वाणी पढ़ने लगेंगे, वाणी में इतनी रुचि नहीं है। बाबा ने यहाँ तक कहा था कि सेवा केंद्र में आने लगेंगे, आपका रास्ते में मन होगा छोड़ो आज कल चले जाएंगे, आज क्या जाना, वो आत्माएं आपके रास्ते में बाधक बनेंगी, क्योंकि उस समय वे दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत है आत्माएं, उनको कुछ चाहिए। और जब उनको चाहिए तो वो आपको नहीं लेने देंगी कि आपको शांति मिले, आनंद मिले, सुख मिले, आप ऐसे बैठिए, वो आपको चैन से नहीं रहने देंगी। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि प्रातः का टाइम, और अगर प्रातः नहीं तो सारा दिन में कोई समय निश्चित कर लो कि विश्व की सर्व आत्माओं को मेरे से शक्तियां लेकर के साकाश दो, अशांत आत्माओं को शांति दो, दुखी आत्माओं के दुखों को हरने की सुखों की शुभकामनाएं दो, दयालु बन, कृपालु बन, ऐसी आत्माओं पर दया और रहम की भावनाएं रख, तुम बच्चे उन आत्माओं को सहयोग दे सकते हो। क्यों बाबा ये हमको बार बार संदेश देता है, बाबा ने ये विशेष स्पष्ट किया है कि अगर आप बच्चे, जबकि आवश्यकता उन आत्माओं को सुख शांति की है और आप उनकी ये आवश्यकता पूरी करने के लिए उनको योग का साकाश देंगे, तो ये आत्माएं आपकी मित्र बन जाएंगी। और मित्र बनी आत्माएं अगर वातावरण में भटकेंगी भी सही तो वो आपको कभी कष्ट नहीं देंगी, चाहे आप योग में बैठेंगे या ज्ञान सुनेंगे या सुनने आएंगे या आप वैसे ही विचरण करते हो, ये आत्माएं आपकी मित्र बनी आत्माएं होंगी, वो आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। ऐसा भयानक समय आने से पूर्व बच्चों को सावधान होकर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हुए अन्य आत्माओं को शांति और शक्ति का सहयोग दो। जिस पर मुझे याद है, मैं कई बार अपना ये एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, मैं जब बाबा के पास एक बार साकार बाबा अपने कमरे में थे और ऐसे ही टांगे लटकाकर बाबा बैठे हुए थे, और बात वो लंबी है, मैं थोड़े में सुनाऊंगी, तो बाबा ने उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाबा तन से बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन वैसे बाबा जैसे कि यहाँ है नहीं, इतनी साइलेंस का टोटल वातावरण था। मेरा नहीं मन हुआ कि मैं आगे बढ़कर कहूँ गुड मॉर्निंग बाबा, और मन नहीं हुआ कि बैठ चली जाऊं, ये बाबा को डिस्टर्ब करना होगा। मैं खड़ी रही, कुछ क्षण ही अभी खड़ी थी कि बाबा ने मुझे बुलाया। उस समय बाबा का ये शब्द था कि बच्चे, इस बाबा के कानों में कई बहुत दुखी अशांत और परेशान आत्माएं हैं जिसकी आवाजें इसको सुनने को आती हैं, और कभी कभी ये आत्मा सो नहीं पाती। मैं उन आत्माओं को साकार देता हूं, और सचमुच बाबा का दृश्य ऐसा ही लग रहा था कि तन से बाबा बैठे हुए हैं लेकिन बाबा कहीं और गए हुए हैं। जैसे उन आत्माओं को शक्ति देने का कार्य बाबा कर रहे। तब बाबा ने कहा था, जब आप बच्चों के मन में सर्व आत्माओं के लिए रहम की भावनाएं आएंगी, कल्याण की भावनाएं आएंगी, स्नेह और प्यार की भावना आएंगी, तभी तुम बच्चे मुझ दाता से सर्वशक्तियों को प्राप्त करके इन आत्माओं को सहयोग दे पाओगे। अगर आप बच्चों के अंदर अभी शांति या कल्याण या प्रेम की या स्नेह और सहयोग की भावनाएं ना होने के कारण बाबा बार बार कहता है कि बच्चे साकाश दो, लेकिन बच्चे साकाश नहीं देते। जिस पर बाबा ने ये बहुत सुंदर स्पष्ट किया था कि विश्व के ग्लोब पर बैठ जाओ, केवल मन बुद्धि से मुझ सर्वशक्तिवान को याद करो, मैं आपको अपनी शक्तियों से परिपूरित करूंगा और ये शक्तियां वाइब्रेशंस के रूप में तुम विश्व की आत्माओं को दे सकोगे, क्योंकि विश्व के ग्लोब पर बैठे हो। ये सेवा बच्चों को करनी है। अब हम अपने आप से पूछें, पुराना वर्ष जा रहा है और कई वर्ष चले गए, कहीं ये वर्ष भी ऐसे ही चला जाए और आने वाले वर्ष में फिर हम सोचे ऐसा करना चाहिए, तो मैं ऐसा कहूंगी कि पुराने वर्ष को विदाई से पूर्व थोड़ा सा अवलोकन कर लिया जाए पुराने वर्ष की तरफ कि कितने काम रह चुके हैं, क्या क्या अभी हमको करना है और अब हमको आगे और बढ़ना है। ये बाबा हम बच्चों को क्यों कहता है? बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे तुम आत्माओं का आत्माओं से कनेक्शन है, क्योंकि हर आत्मा का आत्मा सामाजिक प्राणी होने के नाते कभी आप वहां गए कभी वो यहां आए, इस प्रकार 84 जन्म तुम्हारे चक्कर लगे हैं, लेकिन इनका मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन टूट गया। इसलिए मैं डायरेक्ट इन बच्चों को साकाश शक्ति नहीं दे सकता, ये साकाश और शक्ति तुम बच्चों के थ्रू दी जा सकती है, क्योंकि तुम्हारा मेरे से कनेक्शन जुटा हुआ है, तुम मेरे से वो शक्तियां ले सकते हो और लेकर विश्व की आत्माओं को दे सकते हो। तो सोचिए दाता ने कितना बड़ा कार्य हम बच्चों पर रखा है। हम बच्चे अपने आप से पूछें कि बाबा का दिया कार्य हम कितना सुफुर्ती से और कितना लगन से कर रहे हैं, या हम सुनते ज्यादा हैं परंतु करते कम हैं। सुनाते सुनाते मुझे जो ख्याल आ रहा है, एक बार बाबा ने विशेष कहा, ये एक संदेश था जिस संदेश में बाबा ने सुनाया था कि जब कहते हैं ये शरीर एक गाड़ी है और आत्मा लंबी मुसाफरी पर निकले हो, ये पुरुषोत्तम संगम युग भी तुम्हारी एक लंबी मुसाफरी है, और जब एक कार को ड्राइवर लेकर लंबी मुसाफरी पर जाता है तो उसे विशेष किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप भी अपने आप से पूछो कि इस गाड़ी को लेकर मैं आत्मा रूपी ड्राइवर चल पड़ा हूं मंजिल की तरफ, लेकिन मुझे सारी पहचान है कि मंजिल मेरी कौन सी है, मार्ग मेरा क्या है, तो बाबा ने उस संदेश में सुनाया था कि मुख्यतः 6 बातों का ही अगर ध्यान रख लो तब भी आपकी जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी और आपका जीवन रूहानियत से परिपूरित होगा। कौन सी 6 बातें बाबा ने जो कही थी? पहली बात बाबा ने कही कि लंबी मुसाफरी पर जाने वाला ड्राइवर देखता है कि आगे की लाइट मेरी ठीक है, क्योंकि उसको अंधेरा भी आएगा रात भी आएगी, उसकी लाइट ठीक होगी दुर्घटना होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो बाबा ने कहा आगे की लाइट का ध्यान रखना पड़ेगा और पीछे की लाइट का भी ध्यान रखना होगा, ऐसा ना हो कि पीछे वाले को आगे जाता दिखाई ना दे और आकर कोई टकरा जाएगा। जब गाड़ी लेकर जा रहे हो तो उसका पेट्रोल भी ठीक होना चाहिए, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी वहीं रुक जाएगी, पेट्रोल का भी ध्यान रखना। और जिस मार्ग से आपको जाना है वो मार्ग क्लियर होना चाहिए और जिस मंजिल पर पहुंचना है वो मंजिल की स्मृति पूरी रहनी चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बताया और बाबा ने कहा रास्ते में वो गियर लगाना ये सब होता है, ये सब चीजें तुमको पहले ध्यान देनी चाहिए। ऐसे नहीं सुबह उठे गाड़ी पकड़ी और चल पड़े, रोज तुम्हारी यात्रा है। तो गाड़ी चलाने वाले, दूर की यात्रा करने वाले को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपकी बात इसमें आई तो पहली लाइट कौन सी है जो हमारी आगे की लाइट है, जिसको देख करके हम रास्ता देख के अच्छी तरह जा सकते हैं, क्योंकि हम कलयुग की रात्रि से गुजर रहे हैं, अंधेरा समय है, तामसिकता का वातावरण है। तब बाबा ने कहा कि तुम्हारे मामा और तुम्हारे बाबा ये तुम्हारी आगे की साकार लाइट है। अगर आपको अपनी मंजिल पर कुशलता पूर्वक पहुंचना है तो सदा देखो मामा बाबा ने क्या किया, हम क्या करते हैं, जो हम कर रहे हैं क्या वो माता पिता ने ऐसा ही किया था। जहां देखो हमारे माता पिता के सामने अगर ऐसी परिस्थिति आए तो वो ऐसा नहीं कर सकते, फौरन स्टॉप कर लो, कभी वो कार्य ना करना। अगर आपकी लाइट आगे की ठीक होगी दुर्घटना के चांसेस नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने कई जगहों पर बताया 10 स्टेप हैं, ये 5 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं, ऐसे कर कर के बाबा ने हमको आगे की लाइट को स्पष्ट किया है कि ये लाइट है। देखो उनका जीवन क्या था, कैसा जीवन था, बोल कैसा था, संकल्प कैसे थे, कर्म कैसा था, हर चीज बाबा ने हम बच्चों को बताई। ठीक इसी प्रकार हमारी पीछे की लाइट, अब पीछे की लाइट हमारा निज का जीवन है, हमारी अपने जीवन की धारणाएं हैं, जिसको बाबा कहते हैं तेरे पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लोग तेरे पीछे आने वाले हैं बच्चे जो तेरे जीवन को देख रहे हैं। अगर तेरे जीवन की धारणा श्रेष्ठ नहीं होगी तो कभी न कभी कोई ना कोई दुर्घटना होने के चांसेस बने रहेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, फिर आप कहेंगे मेरा कसूर थोड़ी था, वो तो दूसरे ने ऐसा कहा, तो उसने ऐसा किया तो मैंने किया, उसने कहा तो मैंने कहा। तब बाबा ने कहा दुर्घटना तो दुर्घटना ही है, लेकिन तेरी अपनी धारणा की लाइट न होने के कारण, श्रेष्ठ जीवन न होने के कारण दुर्घटना घट सकती। इसलिए कभी कोई बात हो जाती है हम कहते उसने ऐसा किया, किसी को हिम्मत नहीं कि एक उंगली भी हिला ले अगर हमारा जीवन और हमारे अपने संस्कार श्रेष्ठ होते जाए। आज हम देखते हैं कई बार कोई हमारे सामने गलत शब्द बोल देता है, हम उसको नहीं बुरा कहते, हमको ऐसा आता है ऐसे बोलने की इतनी हिम्मत कैसे हुई। जरूर है हमारे चलन में कुछ दिव्यता रूहानियत की कमी है। जो श्रेष्ठता बाबा कहते हैं आपके चलते फिरते जीवन में होनी चाहिए, वो न होने के कारण इनको ऐसी हिम्मत हुई कि इन्होंने ऐसे कड़वा शब्द या गलत शब्द या कोई अल्जाम या कोई ऐसी बात हमें कह दी। हम उसको दुश्मन न समझें, उससे हम मन मुटाव न कर लें, हम अपने आप को चेक करें। ये बाबा ने हमको हमारी लाइट बताई हुई है, ये तेरी लाइट है। ठीक इसी प्रकार हमारा मार्ग कौन सा है, सही मार्ग पर चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे। अगर छोटी छोटी गलियों में घुस गए, जंगल में चले गए, झाड़ियों में अड़ेंगे और हम कहेंगे चल तो रहे हैं पता नहीं क्या नहीं पहुंच पा रहे, कारण क्या है? हमारा मार्ग है स्पष्ट ज्ञान और प्यारे बाबा का याद, ये हमारा मार्ग है। हम ज्ञान के आधार से चलें और योग की शक्ति को कभी अपने से जुदा ना होने दें। अगर ज्ञान और योग का मार्ग ठीक पकड़ा हुआ है तो हमारी जीवन की गाड़ी बहुत सुंदर चलेगी, कड़ी हटकोले नहीं खाएगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, खड्डा खाई नहीं आएगा। कहीं खड्डा खाई में नीचे ऊपर होता है तो हमारे कुछ मार्ग में कुछ कमी या कमजोरी या अवज्ञा अवश्य होगी। इसलिए ये ज्ञान और योग ये हमारा मार्ग है और हमारी मंजिल आप सबको मालूम ही है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये हमारी मंजिल है। हमको मालूम है कि वाया मुक्ति, हम सबको जीवन मुक्ति में जाना है। तो जब तक हम मुक्ति से जीवन मुक्ति में जाएं, उससे पूर्व इस समय मुक्त होने के लिए हमें अपने पुराने संस्कार स्वभाव, इस पुरानी देह और देह की दुनिया के लगाव और लंगर उठाना अवश्य होगा। जब तक आत्मा अपने पवित्र पावन उज्ज्वल स्वरूप में नहीं आई, तब तक आत्मा अपने घर नहीं जा सकती, रास्ते में रुकावट हो जाएगी, रुक जाएगी। हमने देखा कई बार ऐसा होता है, हम एक बार रशिया देश में जा रही थी तो हमको उन्होंने रुका लिया, हमें समझ नहीं आया कि सब डॉक्यूमेंट्स तो बड़े चेक करके हम लाए हैं, फिर हमको रुकाया क्यों? अब उनकी भाषा बड़े प्रारंभ की ये बात है, जब हम शुरू में गई तो उनकी भाषा तो रशियन लैंग्वेज थी और मैं उसको समझती नहीं थी, वो इंग्लिश समझते नहीं थे। जब सारा प्लेन के लोग सब चले गए, फिर उन्होंने इंग्लिश नोइंग किसी को बुलाया और बात की तो हमें ये बताया कि आपका वीजा एक दिन बाद का है और आप एक दिन पहले ही आ गए, हमने इस चीज का ध्यान दिया ही नहीं था और हमको रुका लिया गया। या तो आप वापस जाइए एक दिन के लिए, या एक दिन एयरपोर्ट में बैठे रहिए, या आप इतना दंड दीजिए तब हम आपको जाने दें। तो नेचुरली तीनों में से एक चीज चॉइस की जाएगी। तो इस दुनिया में तो चॉइस है, लेकिन हमारे मुक्ति धाम के घर जाने की चॉइस नहीं है, वो फिक्स है। अगर कहीं भी लंगर लगा रहा, कहीं भी संस्कार स्वभाव हमारी पवित्रता में खनन डालने वाला हुआ, कहीं भी देह और देह संबंध में लगाव और लंगर है, आत्मा नहीं जा सकती है, बाबा कहते हैं उसे दंड भोगना ही पड़ेगा। और बाबा का विशेष है कि मेरा बच्चा होकर अगर दंड भोगता है तो ये बाप को इंसल्ट लगती है। किसका बच्चा? जिसने अपने बच्चों को पैगंबर बनाया, सबको तुम पैगाम दो, मुक्ति का द्वार खुला है, चलो, और वो मेरे बच्चे सजा खाएं, और जीवन मुक्ति में हमको जाना है वाया मुक्ति से होते हुए, तो जीवन मुक्ति में भी जाना है तो पहले पहले जाएं, ऐसा ना हो कि यहाँ दंड खाया और आगे मुक्ति में बिठा दिया जाए, बैठे रहो जब तुम्हारा नंबर आएगा भेजेंगे, तो क्या होगा? इस दुनिया में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। हमारी बहनें कभी कभी एक्सपीरियंसेस सुनाती हैं। एक ने सुनाया कि हम किसी कंट्री से जा रहे थे अमेरिका कनाडा में, और बिना वीजा के कार ली और कार में चल पड़ी और वहां पर पकड़ी गई और वहां उन्होंने बिठा लिया कि बैठ जाइए क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सब दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं। तो काम बैठी रही 3 घंटे 4 घंटे बैठे, क्योंकि जहां जब निकलने लगे तो लोगों ने हमको कहा कि आप जा रहे हो बिना वीजा के, आपका क्या होगा? कहा हमने सोचा बाबा ले जाएगा, ऐसे तो नहीं बाबा भी ले जाएगा, लानुसार ले जाएगा। लेकिन निकल आए, कहा 4 घंटे हम बैठे रहे लेकिन जिसकी ड्यूटी थी उसकी ड्यूटी भी बदल गई, वो तो चला गया। इतने में दूसरा ड्यूटी पर आया तो उसने हमसे पूछा यहाँ क्यों बैठे हो, तो कहा कि वो पहले वाले ने हमको बिठाया था, कहा जाइए जाइए जल्दी जाइए आप। हमने तो शुक्र किया भगवान हम तो निकल आए। अब उसको मालूम ही नहीं था बात क्या है, बिठाया क्यों, क्यों बिठाया, कहा जी उन्होंने बिठाया, किस लिए बिठाया ये नहीं बताया। चलो इस दुनिया में तो चल जाएगा लेकिन हमारी दुनिया में नहीं चलेगा। अगर हम कहें कि जीवन मुक्ति का द्वार खुला है, सब जा रहे हैं, प्लीज मैं भी जा रहा हूं, मैं भी तो ब्राह्मण था, बैठिए भैया जगह बहुत है यहीं पर अभी विराजमान हो जाइए, तो हम आत्माओं को नहीं जाने दिया जा सकता। तो बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे ये मुक्ति या जीवन मुक्ति ये वास्तव में तेरी वो मंजिल है जिसको तुझे पाना है, इसलिए मुक्ति की भी तैयारी फुल चाहिए और जीवन मुक्ति में भी प्रथम जाने के लिए फुल तैयारी चाहिए, तभी तो वहां पहुंच सकता है। और उसके साथ अपना गेर घुमाना ये करना है तो बाबा हम बच्चों को ये कहते ही है कि याद रखना सुदर्शन चक्र कभी ना भूलना। कैसे आत्मा सतयुग में आई और त्रेता द्वापर कलयुग तक चक्कर लगाया, अब संगम से पुनः उसको परिवर्तित होके फिर सतोगुनी बनना है, ये याद रखना। कभी बाबा उसको ड्रिल रूप में बताता है, कभी चक्र रूप में बताते हैं, भिन्न भिन्न रूपों से हमको बताते हैं ताकि हम ठीक से अपने घर पहुंच सके। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन छोटी छोटी बातों को हम अपने सामने रखें और हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जिस पर मैं बात तो कहती हूं मुझे बीच बीच में और बात याद आ जाती है, कहने तो कुछ आई थी कह कुछ रही हूं, फिर मुझे एकदम ख्याल आता है बाबा ने हम बच्चों को कितना प्यार से चला रहा है। बच्चे तुम ही तो देवता थे। जिस पर मैं देख रही थी कि वो एक साइंटिस्ट थे जो थॉमस एडिसन, बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हो गुजरे हैं ये, इनकी बड़ी सुंदर गाथा मुझे हमेशा अच्छी लगती है तो मैं रिपीट करती हूँ कई बार। कहे थॉमस एडिसन जब स्कूल में पढ़ता था, ये कुमार था, लेकिन पढ़ते हुए भी इसने देखता था कि ये पक्षी उड़ते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ता, और पक्षी खाते क्या है, कीड़े मकोड़े ही तो खाते हैं, और ये कीड़े मकोड़े खा के और ये उड़ते हैं, तो उसने क्या किया, छोटा सा शैतान था बहुत, तो कहते हैं कि उसने कुछ कीड़ों पकड़ा और पकड़ के उनको बेचारों को जूस बना दिया उनका, और जूस बना के एक बच्चे को उसने पिला दिया क्योंकि ट्रायल किया जाए कि उड़ता है कि नहीं। सोचा पक्षी उड़ते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ेगा, तो उसने उसको पिला दिया। अब बच्चा तो बेचारा बीमार पड़ेगा जरूर है। और टीचर देखती थी कई बार ये कई बातें ऐसी ही करता था, तो जब ये एक्सट्रीम में चला गया उस बच्चे ने कहा कि इसने कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए थे और मुझे कहा तू पी ले तो उड़ने लग जाएगा। मैंने कहा थोड़ा तू पी थोड़ा मैं पीऊंगा। इसने कहा नहीं तू पिएगा तो मैं तुझे उड़ता देखूंगा फिर मैं दूसरे को उड़ाऊंगा। तो बच्चे हैं शैतानी हैं, बच्चे ने पी लिया। अब पी के उड़ेगा क्या, अब तो सदा के लिए उड़ने की तैयारी हो जाएगी। तो जब टीचर ने देखा कि ये बच्चा एक्सट्रीम में जा रहा है तो उन्होंने सोचा ये मैड है पागल है। तो नेचुरली काम तो ऐसे ही करता था शैतानी के और बुद्धिहीनता के। कहते हैं टीचर ने एक लेटर लिख के इसकी माँ को भेजा कि आपका बेटा इस स्कूल में हम उसको एडमिट नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज अपने बच्चे को अपने घर ले जाइए और इसका आज से हमने नाम काट दिया है। अगर वो बच्चा मर जाता तो आप सोचिए क्या हालत होती। और बच्चे को ये लेटर तह करके दे दिया कि जाके अपनी मम्मी को दे देना। उसने माँ को लेटर दिया और माँ कहती है कि लेटर पढ़ करके माँ की आंखों से आंसू आ गए और बच्चे ने पूछ लिया मम्मी क्या बात है तुम क्यों रोई। कहा नहीं बेटा तुम्हारी मैम ने लिखा है कि तुम्हारा एडिसन इतना ज्यादा लायक और होशियार है कि इसके योग्य टीचर्स हमारे स्कूल में नहीं है जो इसको पढ़ा सकेगी, इसलिए इस बच्चे को स्कूल ना भेजा जाए। ऐसे बच्चे शुरू बच्चा इतनी बुद्धिमान बच्चा है इसको घर में आप ही पढ़ाओ, तो इसलिए तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगी, तुम्हें स्कूल में नहीं जाना है। और सचमुच माँ ने उसको ऐसा लायक ही मन में समझा, ये मेरा बेटा एक दिन श्रेष्ठ बनेगा लायक बनेगा, उसको नालायक नहीं समझा। हालांकि वो था ऐसा ही, लेकिन माँ ने उसको इतना प्यार और स्नेह से इतना पढ़ाया जो साइंस की इतने सुंदर इन्वेंशंस उस बच्चे ने किए जिससे बहुत बड़ा उसका विज्ञान की हिस्ट्री में उसका नाम आता है। लेकिन माँ ने उसको नशा चढ़ा दिया कि तू कौन है और तू कितना लायक है, उसको ये नहीं बताया कि तू गलत काम करने वाले नालायक हो, तुझे स्कूल से निकाला गया है। और जब काफी बड़ा आदमी बन चुका था, माँ ने शरीर छोड़ा, तो जब अटैची वगैरह ठीक कर रहा था तो उसी अटैची से वही लेटर माँ की अटैची से उसको मिला जिसमें टीचर ने लिखा हुआ था कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये मूर्ख है ये मैड है, इसको आज से हमने नाम काट दिया। तो उसको उस समय आंसू आए कि मेरी माँ थी जिसने मुझे ये ना बताकर ये कहा कि तू बहुत शरूर बुद्धि है बहुत लायक है, तेरे तुझे पढ़ाने के योग्य स्कूल में टीचर से नहीं है, इसलिए तुम्हें स्कूल नहीं जाना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और उसने पढ़ा के अपने बच्चे को लायक बना दिया। आज हम देखते हैं हमारा बाबा हम बच्चों को क्या कहता है। क्या थे हम, मूर्ख थे, पापी हैं, कामी हैं, कपटी, हमने मानते गए सब कुछ हम है। अब तो भगवान बख्शता रहे, तेरा काम है बख्शना, मेरा काम है करना, हम लगे रहे यही काम करने। और बाबा ने आके क्या कहा, बच्चे तू तो डबल क्राउन डीटी था, तू तो सारे विश्व का मालिक है और तुझे मैं फिर से मालिक बनाने आया हूं, तेरी डबल रूप से पूजा हो रही है, तू तो मेरे से भी ऊंचा है, ब्रह्मांड का भी मालिक है विश्व का भी मालिक है। सोचिए जरा बाबा ने हम बच्चों को कितना नशा चढ़ाया, और झूठा नशा नहीं चढ़ाया, क्योंकि उसे मालूम है कि यही देव आत्मा मेरे बच्चे थे, लेकिन विकारों के कारण ये अपनी दिव्यता को गवा चुके। किसी कमजोर को कमजोर कहना बड़ा सहज है, किसी कमजोर को शक्तिशाली बना करके शक्तिशाली है तू ऐसा कहने में जरा मेहनत। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को क्या से क्या बनाया, हम अपने आप से पूछें हम बाबा के वो बच्चे जिनको सत्यता स्पष्ट की, झूठ नहीं बताया, बच्चे तू ही देवता था, तेरे में दैवी गुण थे। और आज हम भी महसूस करते हैं कि अगर हम में कोई झूठ या कपट की बात है तो हमें अखड़ती है कि ये राइट नहीं है। अगर रियल थोड़ी भी कॉन्शियसनेस है मनुष्य के अंदर, थोड़ा भी आत्म स्वरूप की स्मृति में स्थित है, तो उस आत्मा आवाज देती है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग से तुझे बचना है, राइट पर तुझे चलना है। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारी उस जीवन की बोध कराया जिस जीवन को हम विस्मृत हो चुके थे, और आज फिर से हमको देवता बनने के लिए बैठकर पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ा रहा है? मैं देखती थी साकार में बाबा, ऐसे हम बच्चों के साथ बैठते थे, ऐसे हम बच्चे बैठते हैं, और बाबा ये कहता था, ये बाबा तो समझता है कि मैं बीच में नीचे ही बैठूं, लेकिन सब बच्चों को दिखाई नहीं दूंगा, इसलिए बाबा गद्दी पर बैठता है। नहीं तो बाबा भी बच्चों के साथ ही बैठकर बच्चों को पढ़ाना चाहता है। कितना निरहंकारी था साकार में और कितना निरहंकारी है वो निराकार, जो हम बच्चों को आकर के दिव्य बनाता है, लेकिन हमारी कमियां और कमजोरियां नहीं देखता। कमियों को देखकर भी कहता है ये कमियां तेरी नहीं है, ये रावण की चीज है। बच्चे जब तू जा रहा है तो रावण की चीजें रावण को लौटा दे। जब तक तू रावण की चीजों पर अपना अधिकार जमाए रखेगा तो रावण तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे बार बार पकड़ता रहेगा। जो चीज रावण की है वो रावण को दे दे, मैं तुझे जो कुछ तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा, यही तो बाबा मोच्चों को कहता है। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे जिनको स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, और वो यही कहता है तू कमजोर है, तू कभी घबराना नहीं, मैं कमजोर हूँ, मैं जस बलवान तेरा पिता बैठा हूँ, मैं तुझे अपनी शक्तियां दे करके तुझे सुयोग्य बना दूंगा, तो कभी अपनी कमजोरी को कमजोरी समझ के कमजोर ना बन जाना, हिम्मत नहीं हारना। तेरे में अगर हिम्मत रहेगी, कहते गाड़ी में पेट्रोल भी चाहिए, तो वो मैंने पेट्रोल नहीं बताया था, वो था हिम्मत और उल्लास का। कभी अपनी हिम्मत और उल्लास को कम न होने देना। जहां देखना हिम्मत में कमी आई है फौरन बाबा को याद करना, बाबा हिम्मत कम हो रही है, दाता कहता है मैं बैठा हूं, मैं आया हूं। मुझे अपना अनुभव मैं कभी सुनाती हूँ यहाँ पर भी, शुरू शुरू में नहीं थी बिल्कुल, और मुझे ऐसा कोई जीवन में ऐसी कोई घटना आई थी, मैं गुलजार दादी जी के साथ ही रहती थी और जगदीश दादा जी भी साथ थे, वो लिखने पढ़ने में व्यस्त रहते थे, मैं क्लासेस आदि करा देती थी। तो एक बार की बात है कि क्लास हमारी होने वाली है, धारणा की क्लास थी, लेकिन कोई ऐसी बात हुई जो मन से मैं बहुत परेशान थी, और मैं ये सोचती थी मैं किसको बताऊं, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ सबकी, इनको कैसे बताऊंगी। गुलजार दादी थे नहीं, मम्मा हमारी तबीयत ठीक न होने के कारण बॉम्बे गए हुए थे, जगदीश भ्राता जी व्यस्त थे अपने लिखा पढ़ी में, मैं बहुत उदास बैठी थी। लगभग 100-125 माताएं थी क्लास की जो धारणा क्लास करने आई हुई थी। कुछ ही क्षण में मैंने देखा, पहले संदेशी के तन में मम्मा और बाबा का अव्यक्त रूप में पधरा मनी होती थी, लेकिन तभी हमारी क्लास में पधरा मनी का कार्यक्रम चलता था जब टीचर संदेशी को संदेश देती थी कि आज बाबा या मम्मा से ये बात कहनी। लेकिन उस दिन अचानक मामा संदेशी के तन में आ गई, और मामा का जब आना होता था तो ऐसे करके मामा बैठती थी, तो जो ही सबने देखा मामा आ गई, आज कैसे मामा आई, और मैं भी हैरान कि मैंने तो संदेश भी नहीं दिया। मामा ने आते ही ऐसे किया, देखी और देख करके ऐसे किया, मैं बिल्कुल पीछे बैठी थी, तो पता नहीं चलता किसको बुला रही हैं। कभी ये उठता है, कभी वो उठता है, तो मम्मा ऐसे कह देती है, फिर वो उठता है नहीं, फिर वो उठता है नहीं, ऐसे। फिर आखिर मेरे मन में शर्म आ रही थी, मैं टीचर हूँ, थोड़ा अभिमान आ रहा था, मैं उठूं और मम्मा ना कर दे तो कैसा लगेगा। लेकिन हिम्मत रखी मैंने, थोड़ा सा खुद की ऐसा किया मैंने थोड़ा सा, तो मम्मा ने ऐसे किया। फिर थोड़ा मैं और ऊंची हुई तो मम्मा ने, तो मैं हिम्मत रख के मम्मा के पास आई, और उस समय मम्मा ने मेरे हाथ को ऐसे पकड़कर बड़े प्यार से मुझे कहा, आज बाबा ने आपके लिए मुझे भेजा है। बस इतने शब्द ही मम्मा के मेरे लिए अमृत बूटी थी कि मेरे मनोस्थिति आज कुछ परेशान है और मेरे प्यारे बाबा को मेरी मनोस्थिति पहुंच गई है, और बाबा ने खास मेरे लिए मामा को भेजा इतना ही कहने के लिए। और मैंने कहा, मामा मैं ठीक हूं, और मैं ऐसे ठीक हो गई। जो वो बात क्या थी, मैं सचमुच कभी आश्चर्य करती हूँ, मुझे आज तक वो बात याद नहीं आई कि बात थी क्या, इतने तक भूल गई। तो मेरा यही कहने का भाव है कि हमारा सुप्रीम टीचर, माता पिता, शिक्षक, स्वामी हर क्षण हम बच्चों के साथ है, कभी भी मन को छोटा नहीं करना, घबराना नहीं, कुछ भी बात हो बाबा बैठा है, इतना विश्वास निश्चय करके चलना। बाकी मैंने सोचा तो यही था कि मैं क्लास कराऊंगी तो दो बातों पर कराऊंगी, कम बोलना है और कम सोचना है, लेकिन वो तो वही रहा जनरल में मैंने अनुभव सुनाया। ओम शांति, ओम शांति। दो मिनट हम बाबा को याद कर लेंगे।
बाबा